गौरवी जी मिलने के बाद आयु हॉस्पिटल पहुंची। उसे आज अयान के साथ मेजर सर्जरी को असिस्ट करना था, लेकिन मंथन के कॉल के बाद वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, जबकि उसे अपने मन को पूरी तरह शांत रखना था। सर्जरी से पहले आयु चेंज करके अयान के पास गई। अयान ने उसके चेहरे के भावों को नोटिस करते हुए कहा, ऐसे थकी हुई क्यों लग रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना प्रॉपर नींद लेनी है, क्या तुम रात को सोई नहीं थी? बोलते हुए अयान के शब्द सख्त थे। इस वक्त वो आयु का दोस्त नहीं बल्कि उसके सीनियर के तौर पर बात कर रहा था। आयु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, मैंने प्रॉपर स्लीप ली थी, फिर भी मेरा माइंड डिस्टर्ब है। ऐसे में मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें ठीक से असिस्ट कर पाऊंगी। आयु ने बिना कुछ छुपाए सब सच बता दिया। आयु अयान की दोस्त थी, वो अपनी तरफ से उसकी हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करता। उसने आयु के हाथ पर अपना हाथ रखा और प्यार से पूछा, तुम्हारे और आरफ के बीच कुछ हुआ है क्या जिसकी वजह से तुम डिस्टर्ब हो? पर वो तो यहाँ है ही नहीं। कल रात को आरफ वापस आ गया था, आयु ने बताया। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही अयान बीच बोल पड़ा, अगर कल रात वापस आ गया था फिर तुम रात को पक्का नहीं सोई होगी। अयान का इशारा किस तरफ था आयु बखूबी समझ रही थी। उसने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक से सोई थी। गौरवी दादी की हेल्थ कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, ऊपर से मंथन, मैं तुम्हें ठीक से नहीं समझा पाऊंगी। इस वक्त मेरा मन बहुत ज़्यादा अशांत है और मैं ऐसे में सर्जरी करने गई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दूंगी। आयु ने सर्जरी के लिए जाने से साफ मना कर दिया, उसकी एक भी गलती किसी की जान ले सकती थी। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और तुम्हें भी करना होगा। डॉक्टर सिद्धि यहाँ नहीं है, याद है तुमने गौरवी दादी की सर्जरी खुद से की थी। मन अशांत होता है तो उसे शांत भी किया जा सकता है। बोलते हुए अयान ने आयु को अपने पास किया और हल्के से हग किया। वो उसके बालों को सहला रहा था। अयान ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, तुम ज़्यादातर इस वजह से परेशान होती हो क्योंकि तुम्हारे पास बात करने वाला कोई नहीं होता। हम सर्जरी के बाद में हर चीज़ पर डिटेल से बात करेंगे। आयु को इस वक्त सच में एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जिसे गले लगाकर वो अपनी परेशानी को भूल सके। अयान के इस एक हग ने उसके दिल और दिमाग को काफ़ी हद तक रिलैक्स कर दिया। आयु ने आंख बंद करके मन में कहा, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी आरफ का सच सामने आने के बाद में मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उसके साथ रहूं। ज़्यादा से ज़्यादा उन दोनों के बीच बहस होगी, बट होप सो कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो। फिलहाल के लिए मुझे अपने दिमाग से ये सब चीज़ें निकालनी होंगी। सोचते हुए आयु ने 3 से 4 बार गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपने मन को शांत किया। फिर आयु आराम से अलग होकर बोली, ठीक है चलते हैं, अब मुझे ठीक लग रहा है और थैंक यू सो मच हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें सही एडवाइस दूंगा। चलो अब जल्दी से चलते हैं, सर्जरी किसी और हॉस्पिटल में होने वाली है, अयान ने मुस्कुराकर कहा। उसकी बात सुनकर अचानक आयु के मुंह से निकला, हाँ जब भी तुमसे बिना एडवाइस लिए या तुम्हें बिना बताए कुछ काम करती हूँ तो गड़बड़ होती ही है। फिर आयु जल्दी से चुप हो गई। ये सच भी था कि आरफ से बदला लेने के लिए आयु ने पहले अयान से बात की तो उसने उसे ऐसा करने से मना किया था। आयु ने आरफ से शादी करने से लेकर मंथन से डील करने जैसी ज़रूरी बातें अयान से छुपाई थी और इसी वजह से वो अकेले सफ़र कर रही थी। इन सब के चलते उसने खुद को मुसीबत में डाल दिया था। अयान ने आयु की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हॉस्पिटल से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। आयु भी उसके साथ ही जा रही थी। शाम के 6 बजे के करीब मंथन अपने घर से डिवोर्स पेपर लेकर निकल रहा था। वो आरफ से बात करने के लिए खुराना इंडस्ट्रीज जा रहा था। मंथन जब अपने रूम से बाहर निकला तो उसे सामने साक्षी मिली। साक्षी ने उसके हाथ में पेपर्स देखकर पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम और ये कैसे पेपर्स हैं? बोलते हुए साक्षी ने मंथन के हाथ से पेपर छीन लिए और उन्हें पढ़ने लगी। उन्हें पढ़ने के बाद साक्षी के चेहरे पर हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव थे। साक्षी ने जलती निगाहों से मंथन की तरफ देखा और कहा, पागल तो नहीं हो गए हो? तुम उन दोनों की शादी कैंसिल करवाने जा रहे हो? मजाक समझ रखा है तुम लोगों ने शादी को? दी प्लीज आप इन सब में मत पड़िए, मैं और आयु, मंथन साक्षी को समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी साक्षी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, शादी के बाद मेरी आयु से बात नहीं हुई, वरना उसे भी ठीक से समझा देती। तुम मेरे सामने हो और मेरे भाई भी हो तो ये उल्टी सीधी हरकतें मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि आयु के साथ गलत होने से बचाने के चक्कर में तुम खुद उसके साथ गलत कर दो। प्यार नहीं करते हो तुम उससे जो उसकी शादी तुड़वाकर उसे अपने साथ ले जाना चाहते हो? साक्षी का सारा गुस्सा मंथन पर निकल रहा था। मंथन साक्षी से बहस नहीं करना चाहता था। उसने पेपर्स उसके हाथ से वापस लिए और कहा, ठीक है आई प्रॉमिस, अगर आयु अपनी मर्जी से इस शादी में रहना चाहती है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा उसी वक्त। और आरफ का क्या? तुम्हें उसके गुस्से का सामना करना होगा और तुम उसे ठीक से नहीं जानते हो। मंथन मैं नहीं चाहती कि आरफ और तुम्हारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, तो अपने कदम यहीं रोक लो। जो भी मैटर है वो दोनों आपस में सुलझा लेंगे, तुम बीच में मत आओ। साक्षी ने जवाब दिया। वो आरफ के गुस्से को अच्छे से जानती थी इसलिए उसने मंथन को रोकने के लिए अपनी तरफ से हर पॉसिबल ट्राई किया। मुझे उनके गुस्से से फर्क नहीं पड़ता, मंथन ने इतना ही कहा और फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद साक्षी ने सिर पकड़कर कहा, मंथन आरव से मिलने जा रहा है, मतलब वो आ गया है। मुझे इससे पहले वहां पहुंचकर सब ठीक करना होगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। ये तुमने क्या कर दिया आयु? तुम्हें इतना समझाया था कि आरव इन सब में इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी अपनी बेवकूफी में तुमने उससे शादी तक कर ली। साक्षी को अब मंथन के साथ साथ आयु पर भी गुस्सा आ रहा था। उसने घर लॉक किया और मंथन से पहले पहुंचने की कोशिश में लग गई। वहीं दूसरी तरफ आरव अपना ऑफिस खत्म करके केबिन से बाहर निकला ही था कि तभी उसे सामने मंथन दिखाई दिया। मंथन की जो पोजीशन थी उसके बाद उसे किसी तरह की अपॉइंटमेंट या आरव से मिलने के लिए फोन कॉल की जरूरत नहीं थी। वैसे भी मंथन उसके ऑफिस में पहले भी आ चुका था और उसे ऊपर के फ्लोर तक जाने की इजाजत थी। अचानक मंथन को अपने सामने देखकर आरव ने हैरानी से पूछा, कॉल कर देते एक बार, किसी तरह के प्रोजेक्ट में हेल्प की जरूरत थी तो हम फोन पर भी डिस्कस कर सकते थे। मुझे आपसे हेल्प नहीं चाहिए, बस कोई बात करनी थी, बैठकर बात करेंगे तो बेहतर होगा, मंथन ने जवाब दिया। इस वक्त वो दोनों आरव के केबिन के बाहर वेटिंग एरिया में थे। आरव काफी जल्दी में था। उसने जवाब में कहा, मेरे पास बैठकर बात करने जितना टाइम नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है तो यहीं बता दो, वरना कल बात करते हैं। ठीक है, फिर यहीं सही, ये पेपर्स देख लीजिए और इस पर साइन कर दीजिए, बोलते हुए मंथन ने पेपर्स आरव के हाथ में थमा दिए। आरव ने जैसे ही उन पेपर्स को पढ़ा उसके चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। उसने मंथन का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार के लगा दिया। आरव सर्द आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरी मिसेस खुराना के बीच में आने की? तुमने साथ दिया उसका इस फॉल्स वेडिंग में?
मंथन ने आरव को खुद से दूर धकेला और कहा, मैंने उसकी कोई हेल्प नहीं की, जो कुछ भी उसने किया उसमें उसकी मर्जी थी। हाँ, मैंने उसका साथ जरूर दिया है और वो मैं हमेशा दूंगा। थैंक गॉड कि आप मेरी अनु के मर्डर में इन्वॉल्व नहीं हैं, वरना वो कुछ करे या ना करे मैं जरूर कर देता। वो मेरा कुछ नहीं कर सकती है और ना ही तुम। चुपचाप निकलो यहाँ से और एक बात हमेशा याद रखना, नो वन कैन स्टील माई मिसेस खुराना फ्रॉम मी, आरव ने कड़वाहट भरे लहजे में जवाब दिया। जब तक आप ये पेपर साइन नहीं करते थे मैं कहीं नहीं जाने वाला, मंथन ने जिद करते हुए कहा। ठीक है, फिर पूरी उम्र यहीं इसी वेटिंग एरिया में गुजार देना, क्योंकि मैं ये पेपर कभी साइन नहीं करूंगा, आरव में सार्कास्टिक वे में सिर हिलाकर जवाब दिया। वो वहां से जाने के लिए बढ़ा, तभी मंथन ने उसे पीछे से पकड़कर खींचा और चिल्लाकर कहा, वो सिर्फ मेरी है, तुम उसका पीछा छोड़ दो ताकि हम दोनों आराम से अपनी लाइफ बिता सकें। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, तुम समझते क्यों नहीं इस बात को? मंथन के इस तरह खींचने पर आरव की आंखें सर्द हो गई थीं। उसने गुस्से में कहा, डोंट यू डेयर टू टच मी, तुम्हें किसने कह दिया कि वो तुम्हारी है? लीगली वो मेरी वाइफ है। आप अच्छे से जानते हो उसने आपसे शादी क्यों की थी और किस मकसद से की थी। वो अब पूरा हो गया है, उसे आपसे कोई लेना देना नहीं है। एंड वन मोर थिंग, ये सब चीज़ें शादी से पहले ही हमारे बीच डिसाइड हो गई थीं कि अगर आप बेगुनाह निकले तो वो आपको छोड़कर मेरे पास आ जाएगी। हम दोनों शादी करने वाले हैं और आप देखते रह जाओगे। खुशी से ये पेपर साइन करने हैं तो कर दीजिए, वरना आरव खुराना की शादी एक हफ्ते बाद में टूटने की ब्रेकिंग न्यूज़ से आपकी रेप्यूटेशन को बहुत नुकसान पहुँचाने वाला है। मंथन ने आरव को सब कुछ बता दिया कि किस तरह आयु ने उससे डील की थी। उसकी बातें सुनकर आरव का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने उसी वक्त मंथन का गला पकड़ा और उसके मुंह पर जोरदार पंच मारा। वो उसे आगे मारता उससे पहले लिफ्ट रुकी और साक्षी दौड़कर वहां आई। साक्षी ने आरव को रोकने के लिए पकड़ लिया और कहा, प्लीज लिसन टू मी आरव, हम बैठकर बात करते हैं। मतलब इसके बारे में तुम्हें सब पता था और तुमने मुझे नहीं बताया? मुझे नहीं बताया, इट्स ऑल राइट, बट अपने भाई को समझा देती, आरव गुस्से में साक्षी पर चिल्लाया। साक्षी को वहां देखकर मंथन ने कहा, दी प्लीज इन सब में बीच में मत पड़िए, मैंने आपको पहले ही कहा था आप इन सब से बाहर रहिए। इससे पहले कि आरव और मंथन की फिर से लड़ाई चालू होती, साक्षी जोर से चिल्लाकर बोली, तुम दोनों चुप रहोगे और मेरी बात गौर से सुनोगे, मंथन तुम चलो मेरे साथ और आरव तुम गलत समझने से पहले सामने वाले को सुन लिया करो। मैं यहां आई हूं इसका मतलब मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है, तभी यहां पर हूं, वरना मैं मंथन को समझाने के लिए यहां तक नहीं आती। अपनी बात कहकर साक्षी मंथन का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे वहां से ले गई। वहीं आरव अभी भी वहां पर खड़ा था। मिसेस खुराना, क्यों करती हो ऐसा जिसकी वजह से मैं मजबूर हो जाता हूं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करने को? तुमने जो भी किया वो सब मैं भुलाने के लिए तैयार था, पर अब जो कर रही हो वो मेरे सर से ऊपर जा रहा है, जवाब तो तुम्हें देना होगा, बोलते हुए आरव ने गुस्से में दीवार पर 2 से 3 बार पंच किया जिसकी वजह से उसके हाथ पर खून आने लगा। उसी वक्त आरव आयु से मिलने के लिए लाइफ केयर हॉस्पिटल चल दिया।